अब मैं दरखास्तगुजार हूं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर इसहार अहमद साहब, मुअज्जज़ मेहमान-ए-गिरामी और बहुत ही खूबसूरत लोगों, एक खूबसूरत शख्स अभी मुझे एक सवाल दे के गए थे, मुशायर साहब से भी था, मुझसे भी था, बेशतर इसके कि मैं बात करूं उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो ये कि ये जो शौकत अजीज साहब थे वो क्यों गए थे वहां पे, और वो कैंप डेविड पे जाने से पहले वहां पे, फिर आपको मालूम है कि हमारे सदर साहब के साथ दो ही आदमी गए थे, शौकत अजीज साहब और शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, जब कैंप डेविड के अंदर मुलाकात हुई। कैंप डेविड वो जगह है जहां का जो मीटिंग होती है हमें रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, चुनाचे कैंप डेविड में उन लोगों से मिला जाता है जब रिकॉर्ड रखना मकसूद नहीं होता। मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल आपने पूछा है तो इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखें, पाकिस्तान की वो इमदाद कर रहे हैं, अगर कि वो काफी नहीं, अभी उन्होंने 700 मिलियन डॉलर दिए, लेकिन वो मशरूत है क्योंकि अपने आईन के पाबंद हैं और आईन उनका एक प्रेसलर लॉ जिसको कहते हैं प्रेसलर अमेंडमेंट, उसके मुताबिक वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, अपनी कांग्रेस को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इस मुल्क को दी जाए इमदाद या ना दी जाए। तो प्रेसलर लॉ जो है वो रास्ते में हायल होता है पाकिस्तान को अगर एक डॉलर भी उनको देना पड़े। अलबत्ता अमेरिकन प्रेसिडेंट जब खुद तस्दीक कर ले किसी चीज की तो फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट दे देता है कि ये मुल्क जो है हमारी नजर में एनरिचमेंट नहीं कर रहा। उसमें एनरिचमेंट का एक मसला है कि न्यूक्लियर को अफजूदा करने का, न्यूक्लियर मटीरियल को, तो फिर वो कोई ऐसा आदमी जाके देख ले जो ये प्रेसिडेंट को ये कह सके कि हां तसल्ली है मुझे कि वहां एनरिचमेंट नहीं हो रही। ये सिर्फ एक कंजेक्चर है, मेरे पास कोई खबर नहीं है इसकी, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि गालिबन ये बात हो सकती है। तो मैं वसूख के साथ नहीं कहता, लेकिन अगर ये आपको जवाब मिल गया हो इसका। तो दूसरी बात जो थी, मिर्जा अयूब साहब ने ये पूछी थी, अयूब बेग साहब ने, कि क्या था जी मसला, अयूब बेग साहब एनपीटी और सीटीबीटी के ऊपर दस्तखत नहीं किए तो हमारे ऊपर ये क्यों लागू है। अभी इसराइल ने आज ही आपको बताया कि इनकार कर दिया अलबर्बादी साहब को, मैं उनको अलबर्बादी कहता हूं तो अलबर्बादी साहब को उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं दिखाएंगे, हमने कोई दस्तखत वगैरह नहीं किए। तो असल बात यह है कि फिर हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि हमने वो दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन एक वो चीज जिसको हम आजादी कहते हैं, हाकमियत आला कहते हैं, उसके ऊपर आधे दस्तखत कर दिए हुए, हमने पूरे दस्तखत नहीं किए हुए लेकिन आधे दस्तखत जरूर कर चुके हुए। लिहाजा बात होती है कि कौन बात कर रहा है और कैसे खड़ा हुआ है। जब कोई खड़ा हो जाता है तो वो फिडेल कास्ट्रो 44 साल से वहां अपनी जगह पे कायम है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई खड़ा हो जाता है तो लेबनान ने कहा कि हम हिजबुल्ला के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे और हम अपनी तमाम जहादियों के ऊपर पाबंदियां लगा के बैठे हुए हैं, दहशतगर्द करार दे दिए। ये बात होती है खड़े होने की। स्वाजबेक से एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा फौजी मुफक्कर गुजरा है जर्मनी का, उसने कहा था कि दोज नेशंस हु बार्टर अवे देयर सॉवरेंटी फॉर सिक्योरिटी, दे डिजर्व नाइदर सिक्योरिटी नॉट सॉवरेंटी। जो कौमें अपनी हाकमियत आला का सौदा कर देती हैं सलामती के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने को जंग से बचाने के लिए, उसकी हौलनाकियों से बचाने के लिए, ना वो हाकमियत आला की मुस्तहक होती हैं ना आजादी की और सलामती की मुस्तहक होती है। ये है असल बात, हमारा अलमिया जो है ये ही है। और जैसा कि कहा कि पॉलिसीज जो फियर की बुनियाद के ऊपर बनती हैं, फियर डज नॉट स्टैंड फॉर ए पॉलिसी, फियर एक और चीज है, फियर एक भाग जाने का अमल है, ये पॉलिसी का अमल नहीं है। वो भाग जाने का अमल जो होता है वो फितरी रिएक्शन होता है कि आप एक चीज का मुकाबला नहीं कर सके, आप भाग गए, लेकिन ये पॉलिसी नहीं होती भाग जाना, कभी भी पॉलिसी नहीं होती, इट इज नेवर ए पॉलिसी। सो फियर इज नेवर ए बेसिस फॉर पॉलिसी, लेकिन ये माहौल है हमारा इस वक्त। लेकिन जब हम माहौल की बात करते हैं तो ये बड़ा दिगरगू नजर आता है, बज़ाहिर बड़ा खराब है, लेकिन मैं तो और अंदाज में सोचता हूं और यकीनन आप में भी ऐसे लोग होंगे, डॉक्टर साहब भी यकीनन इसी अंदाज में सोचते हैं, वो ये कि ये तो होना था। जो आज ये मार्का बपा है हक व बातिल का, ये तो इसके लिए आसार पहले ही बन रहे थे, ये तो आ रहा था मैदान में, ये तो एक ना एक दिन होना था। और हम खुशकिस्मत हैं आप, मैं, डॉक्टर साहब जो यहां बैठे हुए हैं, जो आज जिंदा हैं, ये देख रहे हैं कि जब ये मार्का बपा हो रहा है तो हमारी नजरों के, हमारी जिंदगियों में, हमारे सांस लेते हुए ये हो रहा है। कितना बड़ा मार्क, ये बड़ा तारीखी मार्क है और दिलचस्प मार्क है ये। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। जैसे वो रॉबर्ट स्कॉट अपनी उसके टेल ऑफ टू सिटी में कहता है, दोज वर द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड दोज वर द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वो सबसे अच्छा जमाना था और सबसे बुरा जमाना। ये बुरा जमाना बाहर जो नजर आता है यही सबसे अच्छा जमाना है, क्योंकि हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है आपको अपने जौहर दिखाने का। एवरी क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने जौहर कैसे एक कौम के तौर पे दिखाते हैं। और हम तो एक मामूली कौम नहीं है, हम तो तू इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी है, हम तो बहुत बड़ा, बड़ी वसी। जो भी इस काल से जुड़ा हुआ है वो उस कौम का हिस्सा है, उसका एक मेंबर है। तो ये जो मार्का है, हको बातिल बपा है, और ताबूत की सारी कुवतें जमा हो गई हैं और बहुत ताकतवर नजर आती हैं। अभी तो मौका आया आपको अपने जौहर दिखाने का, अभी तो आपने खड़ा होना है, और अभी तो इस बैलेंस ऑफ पावर को आपने बताना है कि जो तुम्हारा पैमाना है बैलेंस ऑफ पावर का, हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। और इसके बारे में तवाजन, ताकत का तवाजन क्या है, ताकत का तवाजन आज फलस्तीनियों से पूछो क्या ताकत का तवाजन है। अभी मुजाहिद साहब ने कहा है कि 1:2.5 रेशो हो गई है, लेकिन इसराइली इस तरीके से नहीं सोचते कि दुनिया के अंदर यहूदी सिर्फ पैदा हुआ करते हैं, वहां का यहूदी होना बड़ा लाजिम है, और उनकी आबादी फिक्स हो चुकी है। उनकी टोटल आबादी 15 मिलियन है, 1.5 करोड़, मुसलमान 1.5 अरब है। तो कितना हुआ, हर यहूदी के लिए दुनिया के अंदर 100 मुसलमान है, और अगर 100 नहीं मरता एक यहूदी के बदले में, तो इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पावर तो उनके खिलाफ हो गया। और अगर ये रेशो 1:2.5 पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि वो ये जंग हार रहे हैं, और कोई वजह नहीं कि वो हिजबुल्ला के सामने घुटने टेक गए। उसकी हैसियत क्या थी हिजबुल्ला की? 1997 में मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ था कि देखो तो सही कितना बड़ा मौजूदा रूनुमा हुआ है कि वो साउथ ऑफ लेबनान हिजबुल्ला के प्रेशर के नीचे डाल के छोड़ गए। इतना प्रेशर हिजबुल्ला ने डाला, और वो थोड़ी सी एक तंजीम है, थोड़े से लोग हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बात यह है कि इससे अलामा इकबाल ने 1936 में फरमाया था कि फिर मार कहे रूह बदन पेश है दिल को, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को पुकारा। ये तहजीब का टकराव जिसको आज सैमुअल हंटिंगटन कह रहा है, अलामा ने उस वक्त कहा था कि ये करेंगे ये वारदात, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को पुकारा। कैसे खूनखार दरिंदे बरामद हो रहे हैं इस तहजीब के पीछे से। और अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अब लेकिन इसमें जो उनसर है वो क्या है जो इसका मुकाबला करता है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक उदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गैरत, गैरत कौमों के अंदर उनकी गैरत, उनकी हमियत, जिनकी आज कोई वुकत ही नहीं रही। वो कह रहे नहीं जी अमलियत पसंदी है, तो अमलियत पसंदी ने हमारा भट्टा बिठा के रख दिया। अमलियत पसंदी, हम बड़े प्रेगमेटिक हैं, हम महालात के जमीनी हकायक के साथ, जो कौमें जमीनी हकायक के ऊपर ज्यादा नजर रखती हैं वो जमीन के साथ चिमट के रह जाती हैं, और हम जमीन के साथ चिमट रहे हैं, हमारा आलमिया ये है। और अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत खफा होते हैं कि जब तुम्हें पुकारा जाएगा तो क्या जमीन के साथ चिमट जाओगे? क्यों डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा इसको, क्या फिर तुम उस वक्त, तुम्हें जब ये मजलूम लोग पुकारेंगे, जब मार्का बनेगा, तो क्या जमीन के साथ चिमट जाओगे? तो ये हम जमीन के साथ चिमट के या जमीनी हकायक को देखते हैं, जमीनी हकायक बदलने होंगे हमें। हम नहीं तस्लीम करते जमीनी हकायक को, हम मुसलमान ही नहीं है अगर जमीनी हकायक को हम बदलना सकें तो, या बदलने की कोशिश ना करें। ये जमीनी हकायक नहीं, हमें तो आसमानी हकायक की बात करनी है कि आसमान के क्या सोचता है इस सिलसिले के अंदर। और फिर हिकमत, एक और लफ्ज जो है बहुत निकल आया कि हिकमत। डॉक्टर साहब आई एम वेरी सॉरी, आप तो इतने बड़े माशाल्लाह, और मैं आपकी मौजूदगी में ये बात कहने चला हूं, हमें हिकमत की नहीं हिदायत की जरूरत है। किताब हिकमत ने हमारे लिए हिकमत जो है वो मुकम्मल कर दी। अब हमें हिदायत की जरूरत, हिदायत तो हम लेते नहीं हैं और हिकमत की बात करते हैं, हमारी हिकमत की क्या हैसियत? ये तो इसका नॉलेज जो है, इसकी जो बेस होता है वो नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी हिकमत की जो बुनियाद है वो तो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन क्या चीज है? इन्फॉर्मेशन तो खिरद के पास खबर के पास सिवा कुछ और नहीं, खबर है ना इन्फॉर्मेशन, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ नहीं और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। तो ये बात जो है, हमें इस वक्त जो हम मायूस हैं और हम इस वक्त है, कोई मायूसी की बात नहीं, ये होना था, उसकी वजूहत है, क्यों होना था ये, इसलिए कि पाकिस्तान इज ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। हम इस दुनिया के साथ जब इस्लामी नजरिए को आप अपना ओढ़ना बिछाना अपना मतमय नजर बनाएंगे तो फिर आप इस माहौल में फिट नहीं हो सकते। पाकिस्तान बयक वक्त नजरियाती न्यूक्लियाई जहादी नहीं हो सकता अगर वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के राउंड होल में फिट हो जाए। पाकिस्तान इज ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ये चौकोर खूंटा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के राउंड होल में फिट नहीं होगा। कोशिश की जा रही है, बाहर से भी प्रेशर है, अंदरूनी प्रेशर भी है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? अगर तो ये मुमकिनात में से हो तो मैं तस्लीम कर लूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक कौम के अंदर उसका एक जौहर होता है, उसकी रूह होती है, इनर विल ऑफ द नेशन। ये जो एक्सप्रेस विल है ना, जो हमारी असेंबलियों में नजर आती है, ये तो एक्सप्रेस विल है, वो मुख्तलिफ माहौल के तकाजों के मुताबिक उसके दबाव तले वो बनती है, वो हमारे से वजूद में आती है, लेकिन जो इनर विल होती है, जो डीप विल ऑफ द नेशन, वो इसको कबूल नहीं कर रही और ना कबूल करेगी। आपने उसको बदलने की कोशिश की तो आप टूट जाएंगे, लिहाजा ये ना काम करें। वो जंग जो आपने बाहर लड़नी है वो आपने गली कूचा और बाजार के अंदर लड़ेंगे, ना लड़ें ये जंग, क्योंकि सबसे हौलनाक जंग वो है जो कि आप अपने अंदर लड़ते, ये जंग हमें नहीं लड़नी। हमें अगर लड़नी पड़ी, चॉइस हुई हमारी, तो हम बाहर की जंग लड़ेंगे, और अव्वल तो उसका कोई इम्कान भी नहीं है, क्योंकि ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये सर्द जंग है, हम हालत जंग में हैं इस वक्त, एन इस वक्त जब हम यहां खड़े हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, हम हालत जंग में हैं। बट दिस इज ए कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के साथ जो हथियार होते हैं लड़ने के, वो और हथियार हुआ करते हैं। जैसे रूस ने जंग लड़ी, सर्द जंग लड़ी, इतनी बड़ी ताकत थी लेकिन वो हार गया, हथियार कभी इस्तेमाल करने की नौबत ना आई, न्यूक्लियर उनके पास उस वक्त तकरीबन 21,000 न्यूक्लियर वॉरेंट्स थे, आज भी 7,500 हैं उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वो खत्म हो गए, क्योंकि सर्द जंग के हथियार और होते हैं। उसके अंदर एक तो एक कौम का अपना जज्बा होता है, उसकी यकजहती होती है, उसकी डायरेक्शन, हिस्टोरिक डायरेक्शन होती है, उसका किस रास्ता, उसकी मंजिल का तयन क्या किया हुआ है उस कौम ने। दूसरी बात यह है कि उसके जमहूरी इदारे होते हैं, जमहूरी इदारों का मकसद यह होता है कि कौम की वो विल जो है, वो उसका इरादा, वो उसका जज्बा, उसका इजहार इदारों की शक्ल में होता है। कौन से इदारे? सबसे पहले आपका आईन, और उसका मुहाफिज एक सदर जो उस आईन का पाबंद है, उसके बाद आपकी काबीना और वजीर आजम, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट, उसके बाद आपकी आजाद अदलिया, फिर आजाद प्रेस, और फिर सिविल सोसाइटी। ये चार हिसार होते हैं सर्द जंग के, ये चार हिसार, ये चार दिफाई लाइनें जो हैं ये मौजूद होते हैं, लेकिन वो चार दिफाई लाइनों को कैसे तोड़ा गया, इस दौर में नहीं, उससे पहले भी, जब एमएल कांसी को पकड़ के दे दिया गया, जो रमजी यूसुफ को पकड़ के दे दिया गया, तो फिर मुल्ला जईफ को भी तो पकड़ के देना ही था ना किसी ने, फिर किससे किसी का क्या गिला। तो बात यह है कि हमने जब तक ये सर्द जंग को समझेंगे नहीं कि सर्द जंग लड़ने के अंदाज, अतवार और उसके हथियार क्या होते, उस वक्त तक हम ये नहीं जीतेंगे। तो चुनाचे इसलिए जब मैं कहता हूं कि जमहूरियत, जहाद और जौहरी प्रोग्राम, ये इस सर्द जंग के हमारे हथियार होंगे, जमहूरियत, जहाद और जौहरी प्रोग्राम। जमहूरियत का मैंने जिक्र कर दिया कि उसके अंदर क्या कुव्वत होती है। दूसरी बात यह कि जिहाद जो है वो आपकी विल टू सर्वाइव एंड रेजिस्ट ऑन योर ओन टर्म्स। जिहाद सिर्फ ये नहीं कि आप कताल में कर रहे हैं, जिहाद से मुराद ये है कि आपकी एक कौम का जो एक इरादा अज़्म होता है कि हम जिंदा रहेंगे, और उसके लिए मुजाहमत करना, मुनज़्ज़म मुतहर्रिक मुजाहमत के लिए तैयार रहना किसी भी अंदाज में। और तीसरा जौहरी प्रोग्राम, हमारी जौहरी सलाहियत जो है ये तीसरा जीम है, इन तीनों के इम्तिजाज में जाके हम ये सारा मामला जो है इसको तय कर सकेंगे। अब आते हैं कि ये जो मामला है, ये जो इतना बड़ा मार्का बपा है, इसमें हर एक का हमारा फर्ज क्या है। इसमें फर्ज हमारा ये है कि हम वी शुड टेक पोजिशन, हम किसी एक तरफ हो, हम न्यूट्रल ना हो। देर इज नो सच थिंग एज न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू रास्कैलिटी। मुशायर साहब नोट कीजिए प्लीज। न्यूट्रलिटी इज रास्कैलिटी। जो जो न्यूट्रल होता है ना, वो कोई चीज नहीं, मुझे ओनली डेड आर न्यूट्रल। डॉक्टर साहब क्या कुरान इजाजत देता है इसकी, अल्लाह ताला इजाजत देता है कि आप न्यूट्रल हो जाएं हक को बातिल के मार्के में? हक का साथ देना होता है, आप जो टूटे चाहे चाहे दूसरी तरफ खड़े हो जाए, बीच में ना खड़े हो, चाहे खड़े हैं बुश के साथी बन जाए, शेरोन के साथी बन जाए, वाजपेयी के साथी बन जाए, लेकिन ये कि हमें फिर गोलमोल चक्कर मत दे। ये जो आजकल हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया ना कि हम न्यूट्रल करके थोड़ा सा इधर से भी बचा के उधर से भी बचा के दरमियान की बात नहीं, वी हैव टू टेक पोजिशन नाउ। इस मार्के में सबसे अहम बात जो मेरे आपके लिए हुई है कि वी हैव टू टेक पोजिशन, और पोजिशन टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुल्ला उमर के पास गया ये आखिरी दफा लोग, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा देखें वास्तव में हमें मालूम है कि हमें तबाह कर देंगे, और आप इतने बहुत फिक्रमंद नजर आते हैं हमारे लिए, तो मैं नहीं जानता कि मेरी हुकूमत चली जाएगी जिसके लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हो। मैं जानता हूं कि मैं दरबदर हो जाऊं, मेरे बच्चे जो हैं तबाह हो जाएंगे, मेरा मुल्क रेजा रेजा हो जाएगा, लेकिन ये जो बदमाशी हम देख रहे हैं इसको, इसके ऊपर किसी ने तो खड़े होना है। और मैंने फैसला किया है कि ये अल्लाह रसूल का हुक्म मानूं या मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, मैं उसके हुक्म के ऊपर खड़ा हो रहा हूं। तो क्या फिर शिकस्त दे दी? दे दी उसको शिकस्त? ये मार्के कभी जीते नहीं जाते, ना वो हारेगा ना ये जीतेंगे। और जब एक एस्टैब्लिश पावर, इतनी बड़ी पावर, अब कल ही की बात है, मुशायद साहब ने भी उसका जिक्र किया, नेटो को बढ़ाएं, और सेक्रेटरी जनरल नेटो का जो पैगाम था वो बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा कि अगर अफगानिस्तान में हम हार गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और अफगानिस्तान में हारना क्या है कि तालिबान वापस आ रहे हैं, ये उनका पैगाम है कि तालिबान वापस आ रहे हैं। इज इट दैट नॉट व्हाट दे आर सेइंग? जो आपकी काउंसिल है वो भी कह रही है, वो डेनिस कक्स वाली, वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो तालिबान वापस आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, उन्हें शिकस्त नहीं हुई। ये शिकस्त के पैमाने उनके, शिकस्त और फतह के और हैं, हमारे और, ये नहीं हारी जा सकती जंग सवारी इसका, क्योंकि अमरीका की जो जो उन्होंने हमला किया उसकी कोई इखलाकी बुनियाद ही नहीं है। और ये नेब्रास्का सबमरीन के साथ, पोलैरिस सबमरीन के साथ और टामाहॉक मिसाइल के साथ जीती वाली जंग नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर से नहीं जीती जाएगी, ये क्लैश ऑफ विल्स है। मुकाबला जो है इसके अंदर विल्स का टकराव है, क्योंकि वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कहां अपने किसके खिलाफ करेंगे इनको। जब अब मैं तो इनके लिए एक और बड़ी मुश्किल देख रहा हूं कि जब हर कॉन्फ्लिक्ट जो है जब अपने आखिरी दौर में दाखिल होता है तो फिर मेज के ऊपर उसका फैसला होता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना फंसा लिया है कि जब ये चाहेंगे कि हम मामला करें ये सो कॉल्ड अलकायदा के साथ, तो किसके साथ बात करेंगे? कौन मिलेगा इनको जो मेज के ऊपर आकर इनके साथ बैठ के बात करेगा? इनके पास तो वो कोई एंटिटी मौजूद ही नहीं है, इनके सामने कोई एंटिटी मौजूद ही नहीं है जिससे बात करें। फर्ज किया कि ये कल कहते हैं कि हमें बात करनी है अलकायदा वालों के साथ, कर सकेंगे? क्योंकि वहां कोई हुकूमत नहीं, कोई मुल्क नहीं, कोई चीज नहीं। इतना अनइक्वल मुकाबला और इतना दिलचस्प मुकाबला कभी तारीख में नहीं हुआ कि जिनके साथ लड़ रहे हैं उनका निशान पता भी नहीं है, उनकी शक्लें भी मालूम नहीं है, उनकी आवाजों की भी पहचान नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ इशारे मिलते हैं, इतना बड़ा इबहाम, और आप अंदर से टूट फूट रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं, दुनिया सारी के अंदर शोर मचा हुआ है। तो चुनाचे अलकायदा क्या है? अलकायदा तो एक फ्रेंचाइज है, हर वो शख्स जो मुजाहमत करने का इरादा रखता है आप उसके ऊपर लेबल चिपकाएंगे कि ये अलकायदा है। अलकायदा जैसे मैकडॉनल्ड बर्गर होते हैं, फ्रेंचाइज है दुनिया के अंदर, जिसने किया कि जी ठीक है मैं ये बना रहा हूं, जो भी अमेरिका की ताऊत की ताकत से टकराना चाहता है वो अलकायदा है आज के दौर में। मैं आई एम सॉरी, ये जरूर ये तमहीदी बातें थी, इसलिए मैंने समझा कि मैं ये बात कर लूं। अब आते हैं जो मौजू है पाक भारत ताल्लुकात का, इसके अंदर हमें देखना है कि ताल्लुकात की नौइयत क्या है। पहली बात तो यह है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान भी उससे इतना ही खायफ है जितने हम हैं। यानी पानीकर ने 1933 में जो थीसिस लिखा था, अपना जो वो विजन दिया था कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया क्या होगा, तो वो ही उसी को इंडिया फॉलो किया जा रहा है आज भी। फिर उसके बाद एक इंदिरा डॉक्ट्रिन आई, और उस डॉक्ट्रिन का ये मतलब था कि ये खित्ता जो है बाबुल मंदब, जो अदन पोर्ट है जहां से वो रेड सी खत्म होता है उसको बाबुल मंदब कहते हैं, बाबुल मंदब से लेके आबनाए मलाका तक जो मलेशिया से नीचे है वहां तक ये हमारी टेरिटरी है, ये समंदर हमारा है, इंडियन ओशन हमारा है, ये खित्ता हमारा है, हिंदू कुश से लेके हिमालया तक ये सारा हमारा खित्ता है। और फिर इंदिरा गांधी ने भी ये बाद में भी कहा कि इसके अंदर जो रियासतें हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन उनको ये कोई हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से बाहर के लोग आके बिठा दें यहां पे, या अपने मामलात अपनी मर्जी से तय करें। यानी विद इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने कहा कि दीज आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का ये हक है कि उनको डिक्टेट करे, मनरो डॉक्ट्रिन की तरह, इंदिरा डॉक्ट्रिन, कि ये कंट्री आजाद तो जरूर है लेकिन इनको हम इजाजत नहीं देंगे कि अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी हमारे से पूछे बगैर बनाए। तो वो उसके ऊपर कार्बन थे और यही इंडिया का विजन था, जो वर्ल्ड व्यू है इंडिया का वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो चुनाचे जिस वक्त पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट साइन किया, उसी वक्त नेहरू ने कहा कि तुमने बाहर से एक एलिमेंट को इस इलाके में दाखिल कर दिया है, लिहाजा हम कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। ज्यादा आपको उसने ये जवाब पेश किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ी ताकत को इस इलाके में दाखिल कर रहा है बाहर से, अब हम इसको ये मानेंगे नहीं, इसके साथ मामला नहीं करेंगे। ये बुनियाद बना नेहरू के इनकार से, के इनकार की कि हम कश्मीर के ऊपर तुम्हारे साथ जो हमारे वादे हैं वो हम पूरे नहीं करेंगे। तो आज जो अगर अमेरिका यहां आ बैठा है, अफगानिस्तान में मौजूद है, और आज ये सूरत हाल बनी है कि अमेरिका यहां पे गलबा हासिल करना चाहता है, नेटो को दाखिल करना चाहता है और सारे खित्ते के ममालिक को ताबे लाके अपनी हेजमनी में, अपने कंट्रोल में करना चाहता है, तो इसका सबसे बड़ा सफरर कौन होगा, सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? खुद हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का जो विजन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। जिस माहौल में हिंदुस्तान की एक मजबूरी थी, वो अपनी मजबूरी को अपने जहन नशीन कर ले। दूसरी मजबूरी, हिंदुस्तान इसमें शुबा नहीं है कि इस वक्त बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज के वो 100 बिलियन डॉलर का हदफ क्रॉस कर चुके हैं, उनकी इकोनॉमी 6 से 7% के दरमियान बढ़ रही है, बाद लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी कमी है, उनके पास तवानाई नहीं है, एनर्जी के जराए नहीं है, सिर्फ 2 ऑयल फील्ड है, एक जिसको बॉम्बे हाई कहते हैं जो पाकिस्तान के जहाजों की जद में है, किसी वक्त भी डिस्ट्रप्ट हो सकती है हालत जंग में, और दूसरा आसाम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी ऑयल फील्ड, जो दारुल खिलाफा है आसाम का। आसाम में उल्फा की बहुत जबरदस्त, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम की बहुत बड़ी एक मूवमेंट चल रही है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो अलहदगी पसंद है, वो वहां पर वो डिस्टर्ब्ड इलाका है, लिहाजा ना गुवाहाटी और ना बॉम्बे हाई कोई ज्यादा सिक्योर एरियाज है। और दूसरी बात यह कि ये दोनों मिलके हिंदुस्तान की मौजूदा जो जरूरियात हैं उसका सिर्फ 30% पैदा करते हैं, 70% इस हालत में उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी आइंदा 3-4 साल में, अगर उनको सेंट्रल एशिया के सिक्योर एनर्जी मींस ना मिले तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उनकी इकोनॉमी जो है कलैप्स कर जाएगी। जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो उनके पास सिर्फ वन वे अप होता है, दूसरा रास्ता नहीं होता। इकोनॉमीज या आगे बढ़ती हैं या वो नीचे गिरती हैं, दे आर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जैसे दरख्त बढ़ते हैं या फिर वो डिके करते हैं। तो इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है उन्होंने तो फिर इसका यह मतलब है कि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता निकाला जाए जो पाकिस्तान से होके गुजरता है। लेकिन उनकी ख्वाहिश यह है कि वो वाया श्रीनगर ना जाए बल्कि श्रीनगर को बाईपास करके, कश्मीर को बाईपास करके ये ले ले। और तीसरी बड़ी वजह हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान ये जंग हार गया था, कश्मीर के अंदर ये हार चुका था। आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ था आज से कुछ 7 माह पहले 8 माह पहले, टांडा कैंप का। टांडा कैंप जो है वो गुजरात के साथ हमारी जो सरहद लगती है कश्मीर की उसके करीब है, वहां पे 3 मुजाहिदीन ने अटैक किया टांडा कैंप पे दिन की रोशनी में। पूरा कैंप था, फौजी कैंप है, वहां पे पूरा बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था और उसके नतीजे में पहला एक मुजाहिद मारा गया पहली एनकाउंटर में, दूसरा घुस गया, उसने 6-7 बंदे मारे अंदर और फिर वो खुद भी मर गया, एक मुजाहिद जो था वो जख्मी हो गया और 8 घंटे वो छुपा रहा झाड़ियों के अंदर जख्मी हालत में, अकेला आदमी। और वहां पे 4 जनरल उनके आ गए, जब उनको पता चला उन्होंने छान छून के इलाका साफ कर दिया और फिर कहा कि ये अब तो सिक्योर है, तो चुनाचे जनरल हरि प्रसाद जो नॉर्दर्न कमांड का कमांडर है, कोर कमांडर, डिव कमांडर और एक और उनका जनरल, ये सारे के सारे वहां पे मौका देखने के लिए गए ताकि जवानों का मोराल जो है ऊंचा कर सके। लेकिन उस अकेले मुजाहिद ने जब ये सारे आ गए थे, उस जख्मी हालत में निकल के उनके ऊपर हमला कर दिया। ये बहादुरी की, शुजात की इतनी बड़ी दास्तान उसने रकम की कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसमें एक जर्नैल जख्मी हो गया, बाकी भी जख्मी हुए और वो भाग गए, कुछ और मारे भी गए। बहरहाल उसके बाद हरि प्रसाद ने कहा इसका हमारे पास कोई हल नहीं। यही बात उनके डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कही कि इसका हमारे पास कोई हल नहीं। और जब किसी चीज का कोई हल नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप वो जंग हार गए। जैसे स्टिंगर मिसाइल का अफगानिस्तान में कोई हल नहीं जब रूस को मिला, तो फिर रूस को वहां से निकलते ही बन पड़ी। तो चुनाचे इंडिया ये जंग हार चुका हुआ था। इंडिया अमेरिका के कैंप में नहीं जाना चाहता, ये मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया की बहुत सी मजबूरियां हैं। पॉइंट वन, इंडिया 45 साल तक सोशलिज्म के झंडे तले जिंदा रहा है। नेहरू का फलसफा जो था सोशलिज्म था, कैपिटलिज्म की तरफ वो नहीं उसका झुकाव था सियासी तौर पे, लेकिन बनिया जो है वो बुनियादी तौर पे कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट है। ये एक तजाद है, बहुत बड़ा तजाद है उनके अंदर। लेकिन बहरहाल उनका सोशलिस्ट जो है बहुत पावरफुल है। माना कि इस वक्त मिडिल क्लास उनकी 250 मिलियन लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब है कि 750 मिलियन जो है वो भूखे मरते लोग हैं, 750 मिलियन। और उसका हल कैपिटलिज्म के पास नहीं है। अमेरिका और का तमाम इंपीरियलिज्म मिलके उनके मसाइल का, उनकी तशफी नहीं कर सकता। तो मैंने एक बहुत मुशाहिद साहब आर्टिकल लिखा था कि पैराडाइम शिफ्ट इन साउथ एशिया, कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया जो है वो अमेरिका के कैंप में घुसेगा या नहीं, या अमेरिका जो उसको ख्वाहिश कर रहा है कि उसको लाए। अमेरिकन तमाम थिंक टैंक आज कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को बीच में लाया जाए। उसकी वजूहात है, मैं बयान करूंगा आपको, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। चुनाचे उसमें मैंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान में इंकलाब नहीं आता, और यकीन इंकलाब का मतलब है इस्लामी इंकलाब, उस वक्त हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुकात है ये मसनू रहेंगे। वजह यह है कि यहां तो वडेरा शाही का कंट्रोल है ना, सरकारी मुलाजिम हो, जर्नैल हो, हम वी बिलोंग टू ए वेरी स्पेशल क्लास जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर। अगर चाइनीज की तरफ जाएंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब तक कि ये बड़ी तब्दीली, क्योंकि बच्चे हमारे अमरीका पढ़ते हैं, परफ्यूम हमारे वहां से आते हैं, तल्लक हमारा है, जबान उनकी बोलते हैं, कपड़े उनके पहनते हैं, बर्गर उनका खाते हैं, गाने उनके सुनते हैं। ये वो क्लास जो अपर क्लास है हमारी, इलीट क्लास है, और यही कंट्रोल कर रही, तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। चाइना के साथ हमारा ताल्लुकात उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक यहां से एक सोशल इंकलाब नहीं आता। दूसरा, इंडिया का उनके कैंप में जाना वो भी नामुमकिन है। ये एक बड़ी दिलचस्प गेम है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन हम घबरा गए और हमने इंडिया को वो मराब दे दी कि जिसकी वो तवक्को भी नहीं रखते थे। और सिर्फ इस बात पे कि आके अपना मुंह सीधा करो, जरा बैठ जाओ टेबल के ऊपर, ये कोई इस तरीके से हल नहीं निकलेगा। हम मामलात को नहीं समझ रहे। इसमें आ जाता है कि सेंट्रल पोजीशन जो है कश्मीर की है, वो थी, वो है और वो रहेगी, बावजूद इसके कि इन्होंने और मामलात में बहुत पेशरफ की है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जैसा कि फलस्तीन का हल यासर अरफात को और उस वक्त के इजरायली वजीर आजम रेबिन को नोबेल प्राइज देने से हल नहीं निकला था फलस्तीन का, फलस्तीन ज्यादा खून आशाम हो गया था, आज भी वो मसला और ज्यादा पहले से गंभीर है। तो ये क्या बात हुई कि अगर हल नहीं निकलना तो फिर इस रास्ते पे हम चले क्यों? ये किसके लिए हल निकलेगा? ये मेरा ख्याल है अमरीका के लिए हल निकलेगा। ये एक और बात है, अमेरिका की क्या दिलचस्पी है कश्मीर के अंदर? अगर ये हल नहीं निकलना तो अमेरिका क्यों ऐसे हल के पीछे पड़ा हुआ है जो वो समझते हैं कि हल नहीं निकलेगा? अगर अमेरिका समझता तो मैडलिन ऑलब्राइट ने जो दिल्ली के अंदर सेमिनार हुआ, दिसंबर में था या नवंबर में, मुझे था दिसंबर में जो सेमिनार में, उसने कहा कि कश्मीर का वाहिद हल जो है रेफरेंडम है। अगर वो कह रही है जो पुरानी वजीर खारजा थी अमरीका की और यहूदन भी है नस्ल से, तो फिर इसका मतलब क्या है कि उनके दिल में तो हल यही है बिल आखिर, अमरीका जो फ्लैग बेरर है जमहूरियत का, आजादी राय का और इस्तेसवाब राय का, तो वो क्यों कह रहा है ये बात? और हमने वो करारदादें उठा के अलग रख दी, क्यों? इसलिए कि अमेरिका एक नफ्सियाती कैफियत पैदा करना चाहता है यहां पे, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि कश्मीरी मिन हैसल कौम भारत के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन जब तक ये करारदाद मौजूद हैं और ये ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ हमने जाना है, तो वो पाकिस्तान के हक में वोट देंगे, क्योंकि उसके डेमोग्राफिक सर्वे अगर किया जाए तो 1,25,00,000 कश्मीरियों में से 50,00,000 तो पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं, बाकी 3.8 मिलियन 38,00,000 जो है वादी के अंदर, 2,00,000 जो है वो 3.2 लाख जम्मू में हैं और 2,00,000 बुद्धिस्ट हैं ऊपर। तो जब इसको मजबूती तौर पे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फैसला पाकिस्तान के हक में हो जाएगा, लेकिन कश्मीरियों को अमरीका इस सतह पे लाना चाहता है बिलाखिर नफसियाती तौर पे कि वो कहेंगे नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। फिर वो जाएंगे यूनाइटेड नेशन में करार देदार लेके कि इसको महदूद ना किया जाए यूनाइटेड नेशन के पुराने रेजोल्यूशन की रोशनी में, बल्कि उनको पूरा हक दे दिया जाए जैसे ईस्ट तिमोर को दिया था, और फिर उसके बाद वो कश्मीरी जो है फैसला करे कि मैम इंडिया के साथ भी नहीं रहता, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहता, और फिर नेटो को यहां लाभ बिठाया जाए जैसा कि अभी नेटो को अफगानिस्तान में बिठाया गया है, फिर उसको कश्मीर में दाखिल कर दिया जाए। ये है स्ट्रेटेजिक गेम प्लान जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब इंडिया का मकसद ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ही मुस्तकिल कर दिया जाए, नीलम वैली पाकिस्तान को दे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान को नीलम वैली में मूवमेंट की हर को नकलो हरकत की बहुत तकलीफ होती है, वहां बहुत कैजुअल्टीज होती हैं, तो इनका ये डर खौफ खत्म कर दिया जाए, लेकिन बाकी कश्मीर जो है उसको ना छोड़ा जाए। जबकि अमेरिका का मैक्सिमम मकसद यह है कि वो कश्मीर को आजाद करवा दे, नंबर दो, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वादी को इस तरीके से करे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर चीन के मुकाबले में वो जो जिसको साउथ एशियन नेटो कहा जाता है उसके अंदर ये उसकी खिदमत में मामूर हो जाए। ये है वो मकासद, बाकी सब हेरा फेरी। अब हमारा मसला जो है वो इंडिया नहीं है, इंडिया हमारे लिए कोई चीज नहीं, कोई हैसियत नहीं रखता, ये जंग हम जीत चुके। हमारा मसला है वॉशिंगटन, कि वॉशिंगटन को कैसे हैंडल करें। बहुत लोग कहते हैं ये वॉशिंगटन के साथ कैसे लड़ सकते हैं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है वाकई, लेकिन क्या वाकई हमको वॉशिंगटन से लड़ने की जरूरत है? क्या वॉशिंगटन वाकई हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने जा रहा है? क्या वाकई वो हमें अटैक कर देगा या न्यूक्लियर सलाहियत हमसे छीन लेगा? ये वो जो कुछ भी है वो तो और तरीके भी कर रहे हैं, और तरीकों से भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने, आपने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ किया, उन्होंने कहा हमें कबूल है ये, लेकिन इसकी पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? चौधरी साहब ने तो कह दिया कि हमें कबूल है जो आपने फैसला किया, लेकिन क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? क्या नेटो में शमूलियत दाखिल करने की जो उनकी ख्वाहिश है वो कबूल करनी पड़ेगी, या क्या न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनकी ज्वाइंट कस्टडी कबूल करनी पड़ेगी? इशारा उन्होंने कर दिया कि हम मिलकर पाकिस्तान के साथ ये काम करेंगे, ज्वाइंट कस्टडी दे विल डिमांड फ्रॉम यू, आज नहीं तो कल ज्वाइंट कस्टडी मांगेंगे। ज्वाइंट कस्टडी क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये इसराइल की ख्वाहिश है, ये अमेरिका की जरूरत नहीं है ज्वाइंट कस्टडी। ये उन्होंने बताया है कि इसराइल ने हमसे कह रखा है कि जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में ना हो, हमारे जो महफूज हाथ हैं वो कहते हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए। जब अमेरिका कहता है कि महफूज हाथों में हो तो इसका मतलब है कि उनके महफूज हाथों में हो ताकि ये इस्तेमाल ना हो सके। ये है दो तजादात की दुनिया जिसके अंदर हम चल रहे हैं। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं बहुत नाजुक मोड़ पे हैं। मेरा ख्याल है कि 16 फरवरी से जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं 16 से 18 तक, उसको दानिश्ता तौर पर भारत ने इसको नीचे रखा है, सतह इसकी बहुत अंडर सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर रखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल। सेक्रेटरी लेवल पे पहले माजी में बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी है आखिरी दिन होगी, वो तो सिर्फ तय करने के लिए, इसलिए कि उनको जरूरत है कि हमें मौका दो हम इलेक्शन जीत जाएं। जॉर्ज बुश ने भी इलेक्शन जीतना है, वाजपेयी ने भी इलेक्शन जीतना है, اور دونوں کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی کشمیری کو ادا کرنی اس کی, یہ ہے وہ چال بازی. لیکن کیا باجپائی یہ الیکشن جیت کے طاقتور ہو کے معاملہ کر سکے گا؟ مشاہد صاحب ہرگز نہیں. ان کے آرٹیکل 15 کے نیچے جو شیڈیول دیا ہوا آف انڈین یونین, اس کے اندر کشمیر جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا, اٹ از پارٹ آف دا انڈین ٹیریٹری, پورے کا پورا کشمیر. کیا اس کے پاس 272 کی میجورٹی آ جائے گی؟ اس وقت 188 ہیں ان کے پاس, اور کوئلیشن گورنمنٹ ہے 13 پارٹی کی جو ابھی ڈیزالو ہوئی ہے کل اسمبلی ان کی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 272, اب 272 سیٹیں لینی پڑیں. کتنی لے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 200. باجپائی میں آخر میں کہہ دے گا, کشائی صاحب نے بھی کہا کہ وہ واحد آدمی ہے جو کر سکتا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ ہے جمہوریت کا وہ ایک حصار. وہ جا کے کہہ دے گا کہ مجھے تو 2000 جناب حضور, میں تو بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں میری تو صرف 200 سیٹیں ہیں, میں 272 سیٹیں کہاں سے لاؤں گا, میری پارلیمنٹ میں کیسے لے کے جاؤں گا یہ چیز. یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. انڈیا اس وقت لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جہاد کو ختم کر دے کشمیر کے اندر, تحریک کو کچل دے, وہاں لائن لگا دے, باڑ بنا دے جو 760 کلومیٹر اس نے بنانی ہے, جس میں سے 220 کلومیٹر پہلے ہی بن چکی ہے, باقی وہ بعد میں بنا دیں گے. تو پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جناب اب تو یہی لائن آف کنٹرول ہے, تھوڑا بہت اس کو سیدھا کر لو اور قصہ ختم, یہی کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن سوال پوچھنے کا ہماری حکومت سے یہ ہے, 6 جنوری کے بعد جب اعلان اسلام آباد ہوا, اگر یہ نہ ہو سکا ماضی کے تجربات کی روشنی میں, اور بڑے وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکے گا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پھر کشمیر کی تحریک آزادی کو تقویت فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ روگ سٹیٹ قرار پائیں گے, اور پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور کوئی جہاد تو ایسا نہیں کہ جس کو بجلی کے بٹن کی طرح جب چاہا آپ نے اس کو آن کر دیا, جب چاہا بند کر دیا. کشمیر کے اندر جہاد بہت طویل عرصے کے بعد شروع ہوا, اور آپ اس کو بند کر کے کشمیر کے اوپر ایک نئی پالیسی اختیار کر کے یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کو ایک طرف رکھ کے جو بات کرنے چلے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ٹیریٹوریل ایشو ہے؟ کیا یہ زمین کا معاملہ ہے؟ کیا یہ کشمیریوں کا حق نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں؟ امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار, اور بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حصے بکھرے کر دیے جائیں ان کی خواہشات کے برعکس؟ اور کشمیریت 700 سال پرانا ایک جذبہ ہے, آسانی سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اپنے مقصد سے. کشمیری جہاں جائے گا کٹھا جائے گا, تقسیم نہیں ہوگا, جبکہ پاکستان اور بھارت دونوں مل کے, اور امریکہ اس میں شامل ہے, شریک ہے, وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ٹیریٹوریل ایشو بنا کے, زمین کا معاملہ بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے. یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. دس از کالڈ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. کورٹ جو ہے عدالت, وہ کشمیری قوم ہے, اور اس کے پاس آپ مقدمہ نہیں لے کے جا رہے, اور آپ وہ چیز کے اوپر لین دین کر رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے, نہ ہندوستان کی ہے, نہ پاکستان کی ہے, نہ امریکہ کی ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے ہماری ساری اپروچ کے اندر, اور اس کا دیکھیں گے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا اظہار ہوگا. لیکن ہمیں منحص القوم کیا کرنا ہے؟ اس وقت شبہ نہیں ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے مختلف حوالوں سے بہت دباؤ ہے ہمارے اوپر, لیکن کیا ہماری طرف سے بھی متبادل دباؤ ہے اپنی حکومت کے اوپر؟ کیا اس سرد جنگ کے لیے جہاں ادارے موجود نہیں ہیں تو کیا قوم بھی موجود نہیں ہے؟ کہ کیا قوم کے اندر حمیت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو کے اپنی پارٹی وابستگیاں چھوڑ کے؟ اور پارٹیوں کی کیا بات ہے؟ پارٹیاں تو ساری واشنگٹن کے اپروول کو تلاش کر رہی ہیں, واشنگٹن کی طرف دیکھ رہی ہیں تمام کی تمام پارٹیاں, اس میں کوئی استثنا نہیں. تو پھر کیا قوم اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو غرق ہونے دے گی؟ یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے, میرے سامنے بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا.